कौन सा तत्व क्या वस्तु है इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो हम इस संसार में बार बार आते रहेंगे। भगवान ने भी अन्य जगह कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। एक तत्व है जिसे भगवत तत्व कहते हैं, भगवान का वो तत्व, उसे कोई अगर जान लेता है तो भगवत तत्व को जानने मात्र से उसको इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन केवल भगवत तत्व को जानने के लिए उसको संसार की आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। अगर वो संसार की आसक्ति में लगा रहेगा तो भगवत तत्व समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि जिस चित्त को वो भगवान के तत्व को जानने में लगाएगा, वो संसार की आसक्ति के कारण उसका वो चित्त उस तत्व को जानने में लगेगा ही नहीं। जैसे भगवान ने कहा, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम तया अपहर्त चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान ने कहा है कि जिसका मन भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है वो मेरे को जानने के लिए एक चित्त होकर के लग ही नहीं पाएगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि उसकी हो ही नहीं पाएगी। और भगवान का तत्व इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि भगवान के तत्व को समझना इतना सहज नहीं। भगवान ने कहा है स्वयं, मुझे जानना इतना सरल नहीं। बहुनाम जन्म नामन्ते बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम् सर्वमिति वासुदेवं सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः समात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म लग जाते मुझे जानने के लिए और मुझे जानने का फल यही है कि वो मेरी शरण में आ जाता है। मेरी महिमा को जानने के बाद वो मेरे को त्याग करके संसार में कहीं नहीं जाता। अनेकों भक्तों के जीवन चरित्र हैं इन संदर्भों में। जैसे राजा मानसिंह कुंभन दास जी के पास गए, कुंभन दास जी भगवान के तत्व को जानते थे, भक्त थे, उनकी गोद में भगवान आके बैठ जाया करते थे। तो वो बैठे हुए थे, भगवान आकर के बोले, मेरे को तुमसे जरूरी बात करनी। तो बोले, बोलो कन्हैया क्या कहना चाहते हैं। इतनी देर में राजा मानसिंह आ गए और उनको देख के भगवान अप्रकट हो गए। भगवान अप्रकट हो गए तो राजा मानसिंह, लंबी वार्ता है, राजा मानसिंह ने उन्हें बहुत कुछ देने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने सब कुछ अस्वीकार कर दिया। मन में सोचते रहे, ये पता नहीं कहाँ से आके मर गया। भगवान आकर के गोद में बैठे थे, न जाने कौन सी जरूरी बात कहना चाहते थे, ये बीच में आ गया। और आखिरी में जब उन्होंने सब कुछ लेने से अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि कुछ तो बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता, कुछ तो आज्ञा दो। बोले, एक ही आज्ञा है, अब दोबारा कभी मत आना, दोबारा कभी मत आना, यही आज्ञा है। इतने गरीब थे कुमंदास जी कि उनको तिलक लगाने के लिए शीशा नहीं था, पानी के प्रतिबिंब में देख करके तिलक लगाया करते थे, ऐसी गरीबी थी। उन्हें बड़ा रत्नों से जड़ित वो शीशा देना चाहता था। उनको बैठने के लिए नीचे आसन नहीं था, गाय वगैरह के लिए जो घास आती थी उसी को बिछा करके बैठ जाते थे। देखो आसन का कितना महिमा है, आसन बहुत जरूरी है भजन करने के लिए, जप करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, अर्चन करने के लिए, ये आसन बहुत जरूरी है। उनके पास आसन नहीं था तो बिना आसन के बैठ सकते थे, लेकिन वो गाय को जो घास डालते हैं उस घास को बिछा करके उसके ऊपर बैठते थे। आसन का महत्व है। तो उसने बड़ा सुंदर आसन भी देना चाहा, लेकिन उन्होंने आसन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, खाली ये कहा कि दोबारा मत आना। और हम ऐसे लोगों को, सेठों को, बड़े बड़े लोगों को जाते हैं, इनको बुला के लाते हैं, शायद कुछ दान दक्षिणा देगा। हम इनको बुलाते हैं और वो उनको मना करते हैं। कितना बड़ा अंतर है। हम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हम भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, हम आसक्त हैं भोग और ऐश्वर्य के प्रति। वो क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, वो भोग ऐश्वर्य को बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए वो बुलाते नहीं। दूसरा भी कारण है कि उनको उनसे बड़ी चीज मिली हुई है, तो मन में सोच रहे थे कब जाए कब जाए। आखिरकार उन्होंने सब फटाफट फटाफट मना कर दिया। और जब उसने पूछा कुछ तो सेवा बताओ, तो बोले दोबारा कभी मत आना, यही सेवा है, और वो चला गया। इतनी देर में फिर वो भगवान का ध्यान करते हुए भगवान आके गोद में बैठ गए। बोलो कृष्ण, क्या जरूरी बात कहने वाले थे आप? वो पता नहीं दुष्ट कहाँ से आ गया, क्या कहना चाहते थे? बोले मैं यही कहना चाहता था कि राजा आ रहा है मानसिंह, वो कुछ देना चाहे तो उसे ले लेना। ये जरूरी बात थी, लेकिन अब क्या फायदा कहने से, तुमने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया तुमने? बोले प्रभु आपका अपमान नहीं करना चाहता मैं, कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, एक ब्रह्मांड को भी नाप माना कठिन है, अनंत ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं, और मैं आपका दास होकर के इस तुच्छ व्यक्ति से मांग करके आपका अपमान नहीं करना चाहता था। ऐसे पक्के भक्त होते हैं। लेकिन जो भगवान के तत्व को जानता है, जैसे कुंभन दास जी इस भगवत तत्व को जानते हैं, तो संसार में किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाते, और इनको जानना इतना सहज नहीं, अनेकों जन्म लग जाते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए। अगर हमारा वन पॉइंटेड बुद्धि बुद्धि नहीं है, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारी भोग और ऐश्वर्यों में क्या है? आसक्ति है। आसक्ति मन को लगने नहीं देती। अगर आसक्ति नहीं हो तो हम इस आसक्ति से दूर रह करके अनेकों कष्टों को सहन करके अपना भजन करते रहेंगे। लेकिन हमें कष्ट भी सताते क्योंकि शरीर से आसक्ति है, और विषय भोग भी सताते क्योंकि उनसे भी आसक्ति है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि अभी जैसे देखो सुखदेव गोस्वामी है, गर्भ के अंदर कम कष्ट मिलते हैं, कितने कष्ट मिलते हैं, लेकिन वो संसार में बाहर आना चाहते हैं? नहीं आना चाहते, गर्भ के अंदर ही रहना चाहते हैं। क्योंकि न भोगों से आ सकती है, न ऐश्वर्यों से आ सकती है, ना ही शरीर से आ सकती है। शरीर के कष्ट पा रहे अंदर, लेकिन बोले यहाँ कष्टों में भजन अच्छा है, और हम शारीरिक सुविधा के अनुसार अपना भजन साधन देखते हैं। तो जो भजन साधन है वास्तविक भजन साधन नहीं होता, वो तो शारीरिक आसक्ति के पोषण करते हुए हम चलते हैं। उसके कारण हम जीवों की कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी नहीं बन सकती, और जब तक एकाकी बुद्धि नहीं बनेगी तब तक हम भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। तो ये संसार की आसक्ति दूर हो, इसके लिए क्या उपाय है? कि हम जैसे भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, ऐसे ही हमने अन्य तत्वों को भी जान लेना चाहिए। समझ में आया? जैसे मान लो हमें कोई विशेष वस्तु है उसको पाना है, लेकिन गंदी वस्तु में मन लगा हुआ है तो विशेष वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो गंदी वस्तु से मन हटेगा तभी तो उधर लगेगा। अब गंदी वस्तु से कब हटेगा? जब गंदगी का भान होगा कि ये गंदी चीज है। जब तक गंदी चीज अच्छी लगेगी तब तक हम उसका त्याग नहीं कर सकते। इसलिए सुअर को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये गंदा है, ये विष्ठा है, ये कीचड़ है, तब तक वो हलवा पूरी खाएगा नहीं खाएगा। तो सुअर को अगर विष्ठा के तत्व का ज्ञान कराया जाए तो क्या हो सकता है? उसको तत्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन हम मनुष्य शरीर में अनेकों तत्वों का ज्ञान हो सकता है कि कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, संसार क्या है, जीव तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, नाम तत्व क्या है। ये सब अनेकों तत्व हैं, समझ में? वैष्णव तत्व क्या है? इन सब तत्वों का जिस व्यक्ति को जैसा भान होगा उसके अनुसार वो इन तत्वों के साथ संपर्क में आएगा। जैसे इंद्रिय तत्व क्या है, समझ में आ रहा है? पंच तत्व क्या है जिनसे ये शरीर बना है? तो कृष्ण तत्व को जानने के लिए हमें संसार के तत्वों का भी भान होना चाहिए। संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार तत्व है। ये शरीर भी दुख का एक कारण है और हमें शरीर को ही पोषण करना चाहते हैं। सारी बीमारियां, सारे कष्ट, सारी समस्याएं इस शरीर के कारण है और हमारी शरीर से आसक्ति है। तो ये आसक्ति अनेकों समस्याओं को पैदा करती है। मान लो घर में झगड़े हुए, आज एक बालक का फोन आया, बालक तो नहीं अभी उसके भी बालक हो चुके लेकिन वो हमारे लिए ऐसा ही लगता है हमें कि वो बालक ही है, या हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उसके बच्चे भी हो चुके, तो बता रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है प्रभु जी, घर में झगड़े होते हैं, बीवी पत्नी जो है माँ के साथ रहना नहीं चाहती, आए दिन झगड़े होते हैं। फिर क्या होता है? बोले फिर वो रोना धोना करती है। फिर क्या होता है? फिर बोले वो ससुराल वालों को फोन करती है। फिर क्या होता है? ससुराल वाले मेरे को फोन करते हैं। तो बड़ा शिकंजा कस जाता है। जबकि अगर आप उसका आकार देखेंगे उस भक्त का, तो आप जैसे चार लोग मिलकर के वो एक बनाए है। और फिर भी वो कहता है मैं चारों तरफ से दब जाता हूँ, बताओ। ये तो उस भक्त का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके लिए हमने वृंदावन परिक्रमा में उसके लिए अकेले के लिए 45 मिनट बस रोक के रखी, क्योंकि जब इतना भारी है तो गोवर्धन की परिक्रमा में कितना लेट पहुंचेगा, वो सबसे पीछे चल के आ रहा था। और वो कहता है कि मैं चारों तरफ से दब जाता हूँ। तो उन लोगों का क्या होगा जो आप लोगों से भी आधे हैं? क्या होने वाला है? तो राम जाने, फिर भी वो लोग बहादुर हैं। तो संसार के तत्व को नहीं जानने के कारण ये बहादुरी है, बाकी हर व्यक्ति झुक जाता है। तो बता रहा था ऐसा, तो उसके जीवन में कष्ट क्यों है? ऐसे मन क्यों विचलित हुआ? क्योंकि मन शरीर से आसक्त है और शरीर का जिन लोगों से संबंध है उनसे भी आसक्ति पहुंच गई, उनसे भी आसक्ति पहुंच गई, वहां कुछ व्यवधान हुआ तो मन प्रभावित हुआ, मन को आधी लग गई। क्या लग गई? आधी। आधी माने सबसे पहले जो समस्याएं पैदा होती है वो मन में होती है, और फिर आधी से फिर व्याधियां आती, फिर शरीर में बीमारियां लग जाती। कभी भी व्याधि सीधी नहीं हो सकती। व्याधि की जड़ पहले कहां आएगी? मन में आएगी। और मन में क्यों आ रही है? क्योंकि मन संसार में आ सकते हैं, शरीर में आ सकते हैं तो शरीर का संबंध याद आ रहा है, शरीर में आ सकते नहीं था अपने आप को आत्मा मान के चल रहा है तो प्रसन्न रहेगा सदैव। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। न सोच होगा न आकांक्षा होगी, सदैव प्रसन्न रहेगा। फिर उसके शरीर में बीमारियां लग जाएंगी, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, प्रसन्न रहेगा सदैव, हर अवस्था में प्रसन्न रहेगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता ऐसा? क्योंकि मन आसक्त है। क्यों आसक्त है? क्योंकि संसार को वो नहीं जानता, संसार को नहीं जानता। हम किसी धोखेबाज को नहीं जानते तो हम उसके झांसे में फंस सकते हैं कि नहीं? फंस जाएंगे। अगर हम जानते होंगे तो नहीं फंसेंगे। सुखदेव गोस्वामी तो इस संसार की हकीकत को गर्भ के अंदर ही जानते हैं कि संसार कितना खतरनाक है, कितना वो तत्वित है, कितना वो संसार के तत्व को जानते हैं। अरे चारों तरफ माया का प्रभाव है, कोई माया से बचा हुआ नहीं, इसलिए मैं इस माया के जगत में नहीं आना चाहता। मैं यहाँ आग जल रही है जठराग्नि की, उस आग की तड़फन में मैं यहाँ भगवत चिंतन कर रहा हूं, ये अच्छा है। और माया का प्रलोभन ऐसा है कि थोड़ा सा एक्सटर्नल शांति देता है और उसके बाद 84 लाख योनियों की दाव अग्नि में डाल देता है, फिर वहां जलते रहो जलते रहो जलते रहो, कोई उपचार नहीं। इसलिए वो कहते मैं यहाँ ही ठीक हूँ। 16 वर्ष तक गर्भ में रहे, साधारण बात नहीं थी। कारण क्या था? संसार के तत्व मात्र को जानते थे। तो जब जितना हम इस संसार के तत्व को जानेंगे, और ये हमारे लिए बहुत सहज भी है, क्यों? क्योंकि जो हम जानेंगे वो हम अनुभव भी कर सकते हैं। जाने ते होए प्रतीति, प्रतीति ते होए प्रीति। किसी भी चीज को जानने से उसके बारे में पता चलता है, उसकी आभास होता है, और उसके आभास के अनुसार उसमें या तो प्रीति होगी या द्वेष होगा। किसी वस्तु के बारे में जानने से पता चला, अरे ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, तो उसमें प्रीति हो जाएगी। किसी वस्तु के बारे में जानने से पता, ये तो बड़ी खराब वस्तु है, तो उससे द्वेष हो जाएगा, घृणा हो जाएगी। लेकिन जब तक जानना नहीं है तब तक उस वस्तु से ना घृणा होगी ना प्रीति होगी। तो कृष्ण कितनी अच्छी वस्तु है, कृष्ण तत्व को जानने से उनमें प्रीति हो जाएगी। और संसार कितना घृणित स्थान है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे दिस मटेरियल वर्ल्ड इट्स नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। ये जेंटल आदमी के लिए संसार अच्छा स्थान नहीं है, ये सुअरों के लिए अच्छा स्थान नहीं। जैसे हम बता रहे थे ना, संसार में जिसको अच्छा लगता है कि हाँ ये संसार में अच्छा है, इसका मतलब वो गधा है, सुअर है, जो गंदगी में आनंद का अनुभव करता है। इसलिए संसार की घृणित अवस्था को जानना, इससे संसार से आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और जब संसार से आसक्ति नष्ट जितनी मात्रा में होगी, उतना ही वो कृष्ण तत्व को जानने में लग जाएगी। अगर नहीं होगी तो कृष्ण तत्व को भी जानने में नहीं लगेगी। इसलिए इस संसार के तत्व को जानने का क्या उपचार है? इस संसार के तत्व को जानने के लिए भगवान ने बड़ी दया करके हमें अनेक उपचार दिए, और उन अनेक उपचारों में अभी जैसे हम कल बता रहे थे कि गुरु तत्व दिया। क्या दिया? गुरु परंपरा दी। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदो सकाले नेह ममता, आगे योगो नष्ट परंतप। तो भगवान ने परंपरा दिया, फिर से स्थापित किया। तो जो हमारे हृदय में, हम कई बार बातों को नहीं समझ पाते, अंदर परमात्मा रूप में भगवान हमें समझाते हैं लेकिन हम उन परमात्मा की बात को नहीं सुनते। तो जो चेत गुरु के रूप में, चित्त में बैठ करके जो गुरु रूप में हमें जो भगवान सावधान करते हैं, हम नहीं सावधान होते तो गुरु सामने से आकर के हमें सावधान करते हैं। भगवान परंपरा में सामने से भेजते थे वैष्णवों को, भक्तों को, गुरुजनों को। जहां रह निकट के लिए पाप दूर जाए, पाप में संसार एक मन दयालु प्रभु केवा को थपाए, जिनके निकट जाने मात्र से पाप वृत्तियां सारी चली जाती है और जिनसे दूर जाने मात्र से सारी पाप वृत्तियां जाती है। गंगा परास हुए, गंगा जी का आगमन हुआ, लेकिन हजारों बार गंगा में स्नान करने पर भी आदमी पवित्र नहीं होता, समझ नहीं आती, मूल पवित्रता नहीं आती, लेकिन दर्शन पवित्र को रे तुम्हार को। तो ये भगवत दया है जो वैष्णवों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हमें सामने से मिलती है और हमें टोकती है। इसलिए कभी गुरुजन वैष्णव जन हमें किसी संसार के दुष्कर्म को देख करके या संसार का कोई भी काम है जो हमें अच्छा लग रहा है आज, उसके लिए भी अगर वो टोकते हैं तो हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी अज्ञानता में वो कार्य, हमारी आसक्ति में वो कार्य हमें अच्छा लग रहा है। जिस तरह से कोई संतान है तो संतान जब झगड़ा करके आती है तो माता पिता को अपनी संतान की कभी गलती दिखाई नहीं देती, चाहे अपनी संतान की गलती है फिर भी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उस संतान में आसक्ति है, आसक्ति आदमी को अंधा बना देती है। इसलिए हम भोगों में आ सकते हैं, हम संसारी क्रियाओं में आ सकते हैं, इसलिए वो कार्य गलत है या सही है हमें इसकी जानकारी नहीं रहती और हम उसमें फंस जाते हैं। जिन कार्यों में हम आसक्त नहीं है उन कार्यों को जो भक्त टोकते हैं तो हम भक्तों का सम्मान कर लेते हैं, लेकिन जिन कार्यों में हमारी आसक्ति है वो समझ में नहीं आता कि ये बुरा कैसे है और उस समय जब पॉइंट आउट किया जाता है तब हमसे सहन नहीं होता, तब हम भक्तों को त्याग देते हैं। इसलिए कई बार कथा में भी किसी भक्त की कोई घटना बताई जाती है तो जिस भक्त के ऊपर कोई बात बताई जाती है तो उस भक्त को बड़ा बुरा लगता है और कई बार वो इतना बुरा लगता है उसको लगता है मेरे को टोंट मार रहे प्रभु जी, और वो सोचता है आगे से अटेंड नहीं करना, वो गायब हो जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए इस बात को कि हमें सदैव ही टोके जाने पर उसको गंभीरतापूर्ण तरीके से लेना चाहिए। ये दया है भगवान की। प्रभुपाद जी भी बहुत टोका करते थे, बहुत डांट लगाते थे और किसी का जब ऐसा शासन होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तमाल कृष्ण महाराज ने अपनी डायरी में लिखा कि टू बी विद प्रभुपाद इट इज वेरी डिफिकल्ट, प्रभुपाद के साथ रहना ये बहुत कठिन काम है, इतने स्ट्रिक्ट थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को एक बार गुरु महाराज ने पूछा कि प्रभुपाद जब आप हमें डांट लगाते तो हमें कैसा सोचना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें हंसना चाहिए। बोले ये तो उपहास हो जाएगा। बोले नहीं, हृदय से प्रसन्न होना चाहिए, ऐसे कैसे आप डांट लगा रहे तो हम तो दुखी हो जाते हैं। बोले नहीं, ऐसा सोचना चाहिए संसार में कितने सारे लोग हैं, कौन किसको समझाने वाला है, कोई किसी को अच्छी बात बताने वाला नहीं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें कोई अच्छी बात बताने वाला निस्वार्थ भाव से मिला तो सही, होना चाहिए लेकिन निस्वार्थ भाव से बताने वाला जिसमें उसका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वही सच्चे गुरु की पहचान है। तो बोले इसलिए तुम्हें हंसना चाहिए, हमें भी इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत कठिन काम है। कोई अपना सुधार नहीं करना चाहता, दूसरों का सुधार करना चाहता है, स्वयं वो खुद का सुधार नहीं करना चाहता, स्वयं गुरु बनकर के दूसरों का सुधार करना चाहता है, चाहे गुरु का क्वालिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए गुरु बनकर के भगवान दया करके स्वयं गुरु बनते हैं। भागवत में भी वर्णन आता है कि जो संसार से विरक्त करके कृष्ण तत्व की शिक्षा देता है, उसने कहा कि जे कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए, और दूसरी लाइन क्या है, हाँ याद है किसी को, कीवा विप्र कीवा न्यासी, शूद्र के निनोय, जय कृष्ण तत्ववेता जय गुरु। वो ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है, इसका महत्व नहीं। कृष्ण तत्ववेता है तो संसार से वो निकाल देगा, संसार में घुसने नहीं देगा, हर हालत में नहीं घुसने देगा, स्वयं दीवार की तरह उसके रास्ते में जाके खड़ा हो जाएगा, बोले पहले मुझे सामने से हटाओ तब जाना। कृष्ण तत्ववेता इतना दया का समुद्र होता है, तो हर परिस्थिति में लगता तो ऐसा है कि वो हमारा दुश्मन है कई बार, लेकिन वो हर परिस्थिति में बड़ा चिंता करता है। कृष्ण तत्ववेत्ता की ये पहचान है। वो संसार में, दुखदायक संसार में किसी को क्यों जाने देगा। इसलिए कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु कोई भी है, कृष्ण की शरण में ले जाने वाला है, तो वो भगवान की बहुत बड़ी दया है और हमें उसको शीघ्र अति शीघ्र अपने जीवन में डालना चाहिए। और जो ले लेता है वो संसार के तत्व का ज्ञान करा देता है, तो संसार से हमें घृणा हो जाती है। दूसरा भी रास्ता है जिसे शास्त्र कहते हैं। क्या है? शास्त्र कहते हैं। कृष्ण तत्ववेत्ता वो भी शास्त्रों का आश्रय लेकर के हमें शिक्षा देता है, शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न करता है। जो लौकिक की श्रद्धा है उसे शास्त्रीय श्रद्धा को समझाता है, ज्ञान देता है, दिव्य भाव को प्रदान करता है शास्त्रों के आधार पर। तो शास्त्र भी देता है, ये शास्त्र कहाँ से आई ये भी भगवान ने दया करके दी। तो हमें शास्त्रों के प्रति भी बड़ा गंभीर होना चाहिए, शास्त्र ही हमें इन तत्वों के बारे में जानकारी दे सकता है। अगर हम संसार में इस आध्यात्मिक शास्त्र को छोड़ करके संसार की व्यर्थ की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उसमें श्रम एव ही केवलम, केवल हमारे श्रम का अपव्यय है, केवल मेहनत है, कुछ नहीं, थोता चना है, भ्रम ऐसा है कि इसमें से कुछ निकलेगा लेकिन कूटते कूटते जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब पता चलेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। इसलिए हमें शास्त्रों के प्रति भी बड़ा सतर्क होना चाहिए, ये भी भगवान की बहुत बड़ा वरदान है, दया है। गीता है, भागवत है, पुराण है, वेद है, ये सभी शास्त्रों के रूप में हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। शास्त्र ही भगवान का ही श्वास है, महावाक्य कहते हैं इनको, आमनाय कहते हैं, जो किसी अपौरुषेय कहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं दिया गया, साक्षात भगवान का वाक्य है। इसलिए इन वाक्यों को ही गुरु बताता है, गुरु कुछ और बातें नहीं बताता, लेकिन जिस रूप में वो वाक्य है उस रूप में बताता है। हम लोग स्वयं से कई बार नहीं समझ सकते, स्वयं से वही समझ सकता है जिस पर गुरु वैष्णवों की दया है। स्वयं के प्रयास से कोई नहीं समझ सकता, शास्त्रवेत्ता नहीं हो सकता, अहंकार हो जाएगा उसको। इसलिए ये भी भगवान की बहुत बड़ी दया है। इसलिए गुरु वैष्णव और शास्त्र, इन दो चीजों के माध्यम से हमें ये तत्व समझ में आते हैं। और जब हम इन्हें समझते हैं तो हमें अनुभव भी होता है, उससे पहले अनुभव भी नहीं होगा, उससे पहले अनुभव भी नहीं होगा। अभी जैसे किसी व्यक्ति को पैरों में दर्द हो रहा है, अनेकों शरीर में थकान हो जाती है, कष्ट हो रहा है, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए मिठाइयां खाता है, बाद में पता चलता है उसको डायबिटीज है, तब उसे होश आता है कि मैं जो मिठाई खा रहा था यही मेरी एनर्जी के ह्रास का कारण बनी। तो वो कैसे पता चला? किसी वैद्य के माध्यम से ना। इसी प्रकार एक योग्य गुरु के माध्यम से, एक योग्य वैष्णव के संस्कारों के माध्यम से ही हमें शास्त्र के माध्यम से संसार के तत्वों का पता चलता है और फिर अनुभव होता है। मिठाई तो पहले भी खा रहे थे लेकिन तब अनुभव नहीं हो रहा था कि ये मिठाई खाने से दर्द हो रहा है, लेकिन जब बात समझ गई तब मिठाई खाने लग गए तब अनुभव में आने लगी, अरे ये तो इसी वजह से हो रहा है। तो जब तक बात समझ में नहीं आई थी तब तक अनुभूति कहां हो रही थी। इसी प्रकार संसार दुखालय, संसार में रहते हुए लात खाते हुए भी हमें दुख की अनुभूति नहीं होती। जब कोई गुरु वैष्णव शास्त्री सिद्धांतों के माध्यम से हमें समझा देता है तब हमें पता जा रही ये तो दुखदाई है, तब फिर वो इंद्रिय विषयों से परे हो जाता है। इसी बात को यहाँ कह रहे भगवान, हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, ये पहले इस कर्म के भेद को जानना पड़ेगा, तब परम सत्य समझ में आएंगे कि संसारी कर्म और भक्तिमय कर्म में क्या अंतर है। वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, ये उसका प्रधान लक्षण है। इंद्रिय तृप्ति में पहले नहीं लगाएगा, फिर बाद में वो भगवान में लगाएगा। इंद्रिय तृप्ति से उसे पहले विरक्ति लेनी पड़ेगी धीरे धीरे मात्रा में, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों साथ साथ चलते। और ऐसे ऐसे गंभीर लोग हुए हैं जिन्होंने इतना गंभीरता से इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाया है, लेकिन वो कृपा पात्री हुए, साधारण नहीं हुए। जैसे पराशर जी का चरित्र आता है, पराशर जी थे, पराशर जी कौन है, कौन है, व्यास जी के पिता है, वेद व्यास जी के पिता है। इनके पिता शक्ति थे, इनके पिता का नाम क्या था, शक्ति, और उनके पिता का नाम वशिष्ठ मुनि था। तो वशिष्ठ मुनि ने एक राजा को किसी कारण से श्राप दे दिया था कि तुम असुर बन जाओ, और वो असुर बन गया। और जब वो असुर बन गया तो उसने इनके पुत्र को खा लिया, शक्ति को खा गया, और इनकी जो पुत्र वधु थी उसका नाम अदृश्यांति था, तो वो बच गई, इनके पुत्र को खा लिया। तो इन्होंने सोचा कि अब तो हम निर्वंश हो गए एक प्रकार से, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी जो पुत्र वधु थी वो गर्भवती है। तो गर्भ 12 साल तक उसके गर्भ में रहा, जैसे वेद व्यास जी के पुत्र रूप में शुकदेव गोस्वामी कितने साल तक रहे, 16 साल, ये 12 साल तक गर्भ के अंदर रहा। और एक बार जब रास्ते से जा रहे थे तो वशिष्ठ मुनि को ये पुत्र वधु भी साथ में रहती थी, विधवा हो गई थी, तो रास्ते से चल रहे थे तो वेद मंत्र सुनाई दी, वेदों का शिक्षा देने वाले थे, गुरु थे, कुल गुरु रहे सूर्यवंश के, तो वेद मंत्र सुनाई दिए। तो पीछे पीछे से आवाज आ रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो कोई आदमी नहीं, फिर आगे बढ़ने लगे, फिर वेद मंत्र सुनाई दे रहे हैं, फिर पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, देख रहे तो उनके पुत्र वधु है लेकिन कोई पुरुष तो है नहीं, और स्वर पुरुष का है। तो उन्होंने जिज्ञासा किया, ये वेद मंत्र कौन गा रहा है, कहाँ से आवाज आती, बार बार ऐसा लगता है पीछे से कोई बुला रहा है, और पीछे मुड़ के देखते तो कोई दिखाई नहीं देता। तो तब तो उनके पुत्र वधु कहती है कि ये आपका पौत्र है जो मेरे गर्भ में है, और ये गर्भ के अंदर ही वेद अध्ययन कर रहा है, ये गर्भ के अंदर ही वेद अध्ययन करता है, और हम गर्भ के बाहर भी अध्ययन नहीं कर पाते। वेद तो क्या, वेद का फल भी नहीं अध्ययन कर पाते। 4 वेद हैं, 17 पुराण हैं, 17 पुराणों का फल है 18वां पुराण, 17 पुराण साधन है और 18वां पुराण सिद्धि है। 18वां पुराण फल है, उस फल को भी नहीं ग्रहण कर पाते। ऐसे ऐसे पुराण हैं जिनमें हजारों की मात्रा में श्लोक हैं, स्कंद पुराण है उसमें 81,000 श्लोक है, कितने, 81,000 श्लोक है उसमें। पद्म पुराण है 55,000 के आसपास श्लोक है उसमें, और भागवत पुराण मात्र 18,000 श्लोक, वो फल है, और उसको प्रामाणिकता देती है भगवत गीता जिसमें मात्र 700 श्लोक है, और जन्म ग्रहण करके मर के चले जाते लेकिन एक बार भी कोई नहीं पढ़ पाता, कैसे अभागी, कैसे हम बिना सानिध्य प्राप्त किए संसार में पागलों की तरह, जानवरों की तरह भटकते रहते हैं। और वो वेद अध्ययन कर रहे हैं 12 साल तक, अंदर ही गर्भ के अंदर, क्यों? कष्ट है ना वहां, तो वेद अध्ययन में मन लग रहा है। हम संसार में भोगों में आसक्त तो होकर क्षणिक भोगों में डूब जाते हैं, इसलिए अध्ययन में गुरु जी क्या बात कहना चाहते हैं? प्रत्यक्ष आश्रय लिया क्या पाने के लिए? शिक्षा पाने के लिए। हाँ, एक श्लोक है कि गुरु किस लिए किया जाता है, किसी को याद है श्लोक? तत् विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत। इस भक्ति के विज्ञान को जानना है तो उसी के लिए गुरु के पास जाओ। कैसे जाओ? शमिदा लेकर के। कैसे जाओ? शमिदा लेकर के, अन्यथा मत जाओ। फालतू में कुत्ते पालने के लिए गुरु धारण करने का मत चेष्टा करो। अरे जैसे हमारी परंपरा में शिक्षा गुरुओं की परंपरा है, इसमें शिक्षा पाने के लिए भी बड़े बड़े वैष्णव एक दूसरे के पास इस वृत्ति से जाते थे, घंटों घंटों व्यतीत कर देते थे साथ में इन शिक्षाओं की चर्चा को श्रवण करने के लिए। ये विज्ञान है, इस विज्ञान को जानने के लिए जाओ, इस विज्ञान को जीवन में ढालने के लिए जाओ कि उनके सानिध्य में रह करके बड़ी सहजता से इस विज्ञान को ढाल सकते। ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रभु जी ने बोला है तो अपने को जाना तो पड़ेगा, हम क्लास में कैसे भी नियम बन गया है, नहीं। जिज्ञासा करने के लिए जाओ, जिज्ञासु बन करके जाओ। ऐसा नहीं अभी बुला लिया तो जबरदस्ती कैसे तो भी जाना पड़ेगा, नहीं। इन क्रियाओं को ढालने के लिए जाओ। कैसे आरती होती है, कैसे भजन होता है, कैसे नृत्य होता है, कैसे हम हमारा जीवन आत्मनिर्भर, ये भगवत निर्भर, भगवत निष्ठ होकर के, ब्रह्म निष्ठ होकर के कैसे व्यतीत करें, उन लोगों के आचरण में हम सीख सकते हैं कि वो लोग कैसे ब्रह्म निष्ठ होकर के भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए जीवन जीते हैं। उनके सानिध्य में उस विज्ञान को हम साथ में रह करके नजदीक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पराशर मुनि कि इस वेद वाक्य को सुनकर के वशिष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। आखिरकार उनको समझ में आई, मेरा ही पोता है। और साधारणतः संसार में अगर पोता अगर ऐसा करे तो दादाजी कितने दुखी हो जाते पोता तो छोड़ के चला जाएगा, दादी दादा सब दुखी हो जाते। लेकिन ये भक्त वंश था, जैसे गौर मोहन डे थे, वो अभय चरण जी को देख करके खुश होते थे कि भक्त बनना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए, वेद मंत्रों को सुन, इतना लगनशील है, इतना वेद अध्ययन में निपुण है। और पराशर ऋषि प्रकट हुए। देखो, कोई ऐसा भक्त बन जाता है ना, तो ऐसा भक्त बन जाने के बाद वो स्वयं में भी इतना विरक्त हो जाता है कि उसे इंद्रिय तृप्ति आकर्षित नहीं कर सकती, तब तो वेदता बन गया ना। तो जिस पराशर मुनि ने गर्भ के अंदर इतना लिटरेचर को पढ़ लिया और तत्वों को जान लिया, 12 वर्ष बाद जन्म ग्रहण किया, तो क्या वो इंद्रिय भोगों का कार्य में लग सकते हैं? कभी नहीं लग सकते। वशिष्ठ मुनि का कृपा पात्र है, वेद अध्ययन स्वयं से नहीं कर रहे हैं, वशिष्ठ मुनि के संस्कार उनके अंदर है, इसलिए उन संस्कारों से वेदों को ग्रहण करना। अब जिसके अंदर बनिया के संस्कार है वो फिर धंधे को लेकर के तीर्थ यात्रा करता है। एक बूढ़ा व्यक्ति था, सेठ था, तो जीवन में कभी तीर्थ यात्रा में कहीं निकला नहीं। तो उसके पुत्रों ने कहा कि भाई इनका कल्याण कैसे होगा, क्या होगा? तो एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, उन लोग तो समझा समझा के थक गए, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। आखिरकार एक ब्राह्मण के साथ उन्होंने उसको भेज दिया, आप जाओ तो सही, इसके साथ हम सब धंधा संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। वो चल पड़ा उनके साथ और घूमते 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 कई सारी जगह पर वो भी ब्राह्मण परेशान हो गया, अरे यार इसने पका दिया मेरे को, जब देखो तब रात को भी नोट दाल चीनी इन सब चीजों के बारे में बड़बड़ाता है, भगवत चर्चा भगवत कथा तो इसके दिमाग में कभी घुसती नहीं, तुम लोग ले जाओ इसको यहाँ से। बोले नहीं नहीं तू प्रयास कर, थोड़ा सफलता मिलेगी, लगा रहे तो बेचारा लगा रहा। आखिरकार वो परेशान होकर के वाराणसी ले गया। वाराणसी में शमशान घाट है, तो वहां शमशान घाट पर ले गया। तो वहां जाते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे और इसको हृदय में शांति, आखिरकार इसको हृदय में पता चल गया संसार की वास्तविकता क्या है। बोले मैं इतने दिन से समझा रहा था, लेकिन अब आंखों के सामने इतने सारे लोगों को चलते हुए देख करके इसको अकल आ गई कि संसार की हकीकत क्या है। भगवान को, शिव जी को धन्यवाद करने लगा। बोले देखा अब तो समझ में आया। बोले हाँ मैंने समझ गया, मैंने अपना जीवन सारा व्यर्थ में गंवा दिया, तो लो ये माला लो भजन किया करो। बोले नहीं तो अब क्यों नहीं, अभी तो बोल रहे थे व्यर्थ में गंवा दिया। बोले हाँ व्यर्थ में गंवा दिया, नाम जप। बोले नाम जप को लेकर के नहीं व्यर्थ में गंवाया, तो किस बात में व्यर्थ में गंवा दिया। बोले यहाँ अगर मैं लकड़ी का धंधा करता तो कितना मेरा सील होता, और जीवन में मैं उस लकड़ी के धंधे से वंचित हो गया। तो यहाँ कितनी लकड़ी लगती है लोगों को, ये रिक्वायरमेंट मेरे को पहले पता चल जाती तो मैं यही धंधा चालू करता, लेकिन मेरा जीवन ऐसे ही चला गया। इस बात को लेकर के मुझे रोना आ रहा है कि मैंने जीवन में किया क्या, मैं तो जीवन में कंगाल ही बना रहा। तो उसके अंदर संस्कार है बनिया गिरी के, तो संस्कार के कारण वो तीर्थ यात्रा में से भी वही डिराइव कर रहा है। तो जिस जीव के अंदर जैसे संस्कार उसके पूर्वजों के माध्यम से आते हैं, वो शास्त्रों को भी पढ़ता है तो उसमें से भी वही चीजें निकलता है जो उसके मतलब की। इसलिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए संस्कारों का शुद्धिकरण होना ये बहुत अनिवार्य है। संस्कार में किसके अंदर क्या गलती है, क्या समस्या है, ये प्रामाणिक परंपरा में गुरु वैष्णव लोग ही जानते हैं। और वो गुरु वैष्णव लोग उसे बड़ी अच्छी तरह से, जिस प्रकार से कुम्हार मटके को बनाता है, मिट्टी को ढालता है, इसी प्रकार से गुरु वैष्णवों का नित्य सानिध्य ऐसे संस्कारों को बनाता है, पुराने संस्कारों को जला देता है। और एक बार ऐसे संस्कार बन गए तो उसकी सारी क्रियाएं दिव्य हो जाती। जैसे पराशर मुनि के अंदर ऐसे संस्कार थे कि ऐसे संस्कारों से उन्होंने सारे शास्त्रों को बड़े गहन अध्ययन किया, और आगे चल करके इन्होंने बड़ी सुंदर संहिता भी बनाई, पराशर संहिता। उस संहिता में धर्म और अधर्म का निर्णय किया और कहा ये धर्म श्रेष्ठ है, नारायण श्रेष्ठ है, नारायण की भक्ति ही जो धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट है, बाकी सब अधर्म है। साथ में ये ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान थे, लिटरेचर का अध्ययन किया तो ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान बन गए। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार किस बात और किस समय में क्या घटित, क्या घटना घटने योग्य है, सब चीजों को बड़ा अच्छी तरह से जान लेते थे। लेकिन भक्ति के संस्कार थे तो बाह्य दृष्टि से इनका जीवन ऐसा लगता है कि अरे जब एक बार यमुना भ्रमण कर रहे थे, किनारे किनारे जा रहे थे जंगल में, तो उस समय सत्यवती को देखा और सत्यवती को देख करके उससे नाव पार होने के लिए उसकी नाव में चढ़ गए। जब नाव में चढ़ गए सत्यवती से कहा देवी हमें उस पार जाना, उस पार लेकर के चली और उसके रूप को देख करके आसक्त हो गए, ऐसा वर्णन आता है। वास्तव में उसके रूप को देख करके आसक्त नहीं हुए, ऐसी प्रतीति होती है। फिर उन्हें दूसरी पार ले चलो, उस पार ले चलो, उस पार से फिर बोले उस पार ले चलो। वो देख रहे थे कि ऐसा नक्षत्रों का समय का एक ऐसा योग बनने जा रहा है कि उस योग में अगर किसी का गर्भाधान किया तो साक्षात भगवान प्रकट होंगे। और उन्होंने जैसे ही वो नक्षत्रों का योग बना, तुरंत उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र दान करना चाहता हूं। हे ऋषिवर, पुत्र दान आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो अबला हूं, मैं तो अभी कन्या हूं, मेरा पिता की आज्ञा के बिना मेरा विवाह किसी से हुई नहीं, तो मैं आपके आपसे पुत्र को कैसे ग्रहण कर सकते हो। उन्होंने कहा ऋषि जानते थे, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम अक्षत योनि बने रहोगे, तुम्हें हानि नहीं पहुंचेगी, पुत्र प्राप्ति में यौवन अवस्था का बलिदान करना पड़ता है, पुरुष को भी और स्त्री को भी, जवानी जब जाती है तभी संतान पैदा होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो नहीं तुम चिंता मत करो, तुम अक्षत योनि बने रहोगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बोले लेकिन आप मेरा संग कैसे कर पाएंगे, मैं तो मत से गंदा, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध आती है, आप तो ऋषि हैं। बोले तुम योजन गंदा बन जाओगे, दूर दूर तक एक योजन तक तुम्हारे शरीर से अब सुगंध आया करेगी, चिंता मत करो मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ऋषि प्रकाश है, दिन का वातावरण है, दिन में आप कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। बोले ठीक है मैं अंधकार फैला देता हूं। तो उन्होंने कोहरा पैदा कर दिया, कोहरा पैदा हो गया। लेकिन हम तो अभी जल में हैं, जल में ऐसे कैसे संबंध स्थापित कर सकते। बोले चिंता मत, जल में काई पैदा कर दिया, और काई पैदा करके जो स्लिपरी बनाती है ना, वो वाला ग्रीन ग्रीन का जल में जो पाया जाता है, तो क्या जो भी है, तो काई पैदा कर दिया। और फिर उन्होंने धीरे बोले लेकिन मैं इस पुत्र को लेकर के समाज में कहाँ जाऊंगी। बोले पैदा होते ही बड़ा होके चला जाएगा, तुम चिंता मत करो। बोले लेकिन आप इतने पीछे क्यों पड़े। बोले जगत कल्याण के लिए, किस लिए जगत कल्याण, इससे संसार के जीवों का बड़ा कल्याण होगा, ये इतना तेजस्वी पुत्र होगा। बोले ये तुम्हें पुत्र के रूप में तुम्हारी सेवा भी करेगा आने वाले समय में। और सत्यवती से उन्होंने इस संतान को उत्पन्न किया और वेद व्यास जी बने। जबकि कोई शादी नहीं, कुछ नहीं, ब्याह नहीं, कुछ नहीं। तो यहां से तो ऐसा लगता है कि वो बड़े इंद्रिय भोगी रहे होंगे, हाँ, लेकिन वो इंद्रिय भोगी नहीं थे, तत्ववेत्ता थे। तो जो तत्ववेत्ता होता है वो अगर इंद्रिय भोगी भी दिखाई देता है हम जैसे दुष्टों को, लेकिन वो वास्तव में इंद्रिय भोगी हो ही नहीं सकता। वो क्यों भगवान यहां कह रहे हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, जो तत्ववेत्ता है। इसलिए हम अगर अपने आप को इंद्रियों के भोगों में अगर लगा रहे और इंद्रियों की इच्छाएं हमारे जीवन में हमें निरंतर सताती रहती है, परेशान करती रहती है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां हैं। त्वचा की इंद्रिय का स्पर्श, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना, हाँ, चार चार पांच पांच हजार। आज मैंने सुना एक वक्त चार चार पांच पांच हजार के कपड़े पहनता है, मेरे को बड़ा दुख लगा। दो दो तीन तीन जोड़ी जूते हैं, फिर भी जूतों की लाइन लगाता है। शादी में जाना इसलिए और नया जूता चाहिए, बड़े दुख की बात है। तब मेरे को याद आया कि चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा था, भालू ना खाई वो, भालू ना पहनी वो। शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर को अच्छा स्पर्श सुख पाने के लिए कितना कितना पैसा खर्चा होता है। बढ़िया बढ़िया खाने के लिए कितना बढ़िया बढ़िया पैसा खर्चा करती है पब्लिक, और वही कपड़ा ही पहनना है, शरीर को ही ढकना है। हाँ, 1100 रुपये मीटर का कपड़ा, कितना 1100 रुपये मीटर, मेरे तो जमीन ही निकल गई। 1100 में कितने धोती कुर्ते आएंगे, 3 सेट आ जाएंगे धोती कुर्ते के। एक दान भी दे सकते हैं और दो पहन सकते हैं, तो दान देने वाला भी आशीर्वाद देगा। कितना अच्छा है, पब्लिक पता नहीं कैसा कैसा। भक्ति मार्ग में ये इंद्रिय तृप्ति दर्शाती है कि हम वास्तव में भक्ति मार्ग में नहीं है, तब तो वेदता नहीं है। लेकिन पैसा आ रहा है, दुनिया भर का था पैसा आ रहा है, कुल कुमार रहा है, पैसा आदमी फेंक रहा है इधर से उधर, पागलों की शर्म आनी चाहिए। एक एक रुपए को बचाना है, एक रुपया भगवान की सेवा में लग सकता है, भगवान की संपत्ति है, हमें इंद्रिय भोग में लगाने का अधिकार नहीं। इसलिए गुरु अगर ऐसी बातों को समझाते हैं, वैष्णव इन बातों को समझाते हैं, तो हमें इशारे से ही समझ जाना चाहिए, इतना एक्सपर्ट होना चाहिए। सनातन गोस्वामी इतने एक्सपर्ट थे, उनको किसी ने कंबल दान में दिया था और वो कंबल को लेकर के महाप्रभु के सामने गए, तो महाप्रभु खाली दृष्टि मात्र किए और दृष्टि से ही समझ गए कि ये कंबल बीमारी है। और जाकर के उन्होंने कंबल, एक बेचारा धोबी था, वो धोबी घाट पर फटे पुराने कपड़ों को धो धो करके सुखा रहा था, उसको भाई तेरी ये फटी हुई गोदड़ी मेरे को दे दे और मेरा ये कंबल ले ले। तो गरीब था बेचारा, महाराज क्यों मेरा उपहास उड़ाते यार, क्यों मेरे को चिढ़ा रहे। अरे भाई मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरा ये कंबल ले। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप, इतना कीमती कंबल कहीं आप मेरे को देने वाले। अरे भाई मैं तेरे को देने के लिए लाया हूँ, तुम्हारे पास ये फटा हुआ है इसलिए मैं तुम्हें दूंगा। दे दिया उन्होंने और फटा हुआ ले लिया, लेकर के चले आए चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा लिया, खुश हो गए महाप्रभु। ऐसा ही होना चाहिए सनातन। तो ये सब हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपना जीवन जी करके दिखाया है, और हम बढ़िया आलीशान मकान, आलीशान दुकान, आलीशान कपड़े, बूट शूट, बढ़िया खाना पीना, एकदम स्टैंड फटाफट फटाफट ऑर्डर इंटरनेट पे फटाक से चला जाता है। कभी ये वस्तु मंगाना, कभी वो वस्तु मंगाना। संग्रही, घोर संग्रही, घोर इंद्रिय भोगी, इंद्रियों का रात दिन चिंतन, और ये अनेकों भोग भोग तो रोग को देने वाले, अनेकों रोग लग जाते हैं। मन शांत नहीं है, अशांत है, रात को 2 बजे घबराहट होती, फिर बड़ा बुरा हाल है। आप सब लोग अपने जीवन के लिए समझो इन बातों को, और गुरु वैष्णव के रूप में, शास्त्रों के रूप में जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, इस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करो। किसी के ऊपर हंसने या किसी के ऊपर रोने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें स्वयं का रोना रोना चाहिए, स्वयं के ऊपर हंसना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सॉरी यहाँ थोड़ा प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। कहाँ पहुंच गए थे हम? हाँ बोलो भाई। हाँ 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 लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना हो गई, और प्रभुपाद जी खुश हो गए। उनके घर परिवार में जब चोरी हुई तो उसे देख करके ना, जब ये कलकत्ता स्थित अपने परिवार को देखने गए तो उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपना संबंध तोड़ लिया। अभी भी वहां उनका कुछ व्यापार था, और वहां वे झांसी स्थित अपने प्रचार कार्य के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें पुनः पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस जाना पड़ा। उनके कुछ बच्चे अभी अविवाहित थे और किराया तथा अन्य बिलों का भुगतान करना बाकी था। यदि वे कलकत्ता के औषधालय को विकसित करना भी चाहते तो वे जो कुछ कमाते उसे परिवार वाले मांग लेते, और यदि वे परिवार वालों की मांग को स्वीकार करके घर पर ही रहने लगते तो सबसे बड़ी कठिनाई तो अब भी शेष रहती। वे सब भक्ति के प्रति गंभीर नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यदि ये लोग भक्त नहीं बन पाएंगे तो इससे क्या लाभ होगा। उनकी पत्नी तथा संबंधियों को उनके झांसी के प्रचार कार्य में कोई रुचि नहीं थी, परंतु वे चाहते थे कि अवैध व्यापार तथा घरेलू मामलों में अधिक समय लगाएं। उनके ससुर ने उन्हें उलाहना दिया, जैसे हम आज ससुर की बात बता रहे थे, नहीं तुम सदैव ईश्वर के विषय में ही क्यों बोलते रहते हो, लेकिन जब मित्र मिलने आ जाते तो अवै भगवत गीता का प्रवचन चालू कर देते, जैसा कि वे झांसी में किया करते थे। और उनकी पत्नी का शेष सारा परिवार पूर्वत एक कमरे में चल जाकर के चाय पीते रहते। परिवार के लोगों ने सहयोग नहीं दिया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। क्यों? अरे प्रभुपाद जी घर से निकलते नहीं, फिर नहीं निकलते तो हमारा क्या होता। लेकिन जब मित्र मिलने आते, प्रभुपाद बाद में याद करके बताते थे, मैं अपनी पत्नी को कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अधिक से अधिक लगाना चाहता था, लेकिन वो अत्यंत दृढ़ थी नहीं लगने के लिए। अतएव अंत तो 30 वर्ष बाद मैं यह समझ पाया, कितने साल बाद? 30 साल बाद यह समझ पाया कि वो मेरी किसी तरह मदद नहीं करेगी। अब अपनी पत्नी को सदैव सलाह दिया करते कि चाय नहीं पियो, क्योंकि कट्टर वैष्णव परिवार में यह प्रथा नहीं है। अंत में उन्होंने कहा तुम्हें चाय और मेरे बीच चुनाव करना है, या तो चाय पियो या मुझे धारण करो, या तो चाय छूटेगी या मैं जाऊंगा। अभय की पत्नी ने हंसी में कहा तब तो मुझे अपने पति को ही छोड़ना पड़ेगा। तत्पश्चात पत्नी ने एक गंभीर त्रुटि कर दी, गलती हो गई। उन्होंने अपने पति की श्रीमद भागवत की प्रति बेचकर चाय और बिस्कुट खरीद ली। जब अभय घर आए और उस पवित्र ग्रंथ की खोज करने लगे तो पत्नी ने जो कुछ घटी थी उन्हें बता दी। अभय सन्न रह गए और इस घटना के कारण उन्हें परिवार को सदा के लिए त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा। नितांत संकल्प की मुद्रा में उन्होंने अपना परिवार तथा व्यापार छोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की हरे कृष्ण। Gracias.